ओम शांति, ओम शांति। ये दुनिया क्या है? ये दुनिया क्या है? बाबा ने आज इस दुनिया को नाम दिया है भूल भुलैया का खेल। भूल भुलैया का खेल। हम आत्माएं परम धाम की निवासी हैं और यहां इस सृष्टि मंच पर खेलने लिए आए, पाठ बजाने लिए आए। लेकिन क्या हो गया? हम सब भूल गए। क्या क्या भूले? अपने आप को भी भूले, अपने बाप को भी भूले, अपने घर को भी भूले, अपने पाठ को भी भूले, सब कुछ भूल गए और इस भूल भुलैया में फंस गए, है ना? और इसी का यादगार है लखनऊ में। लखनऊ यूपी की राजधानी में एक बहुत बड़ा मकान महल जैसा है, तो वहां पर जो भी अंदर जाता है अगर उसको गाइड नहीं मिलता तो वो अंदर सब गुम हो जाता है, क्योंकि इतनी छोटी छोटी गलियां हैं और उन गलियों से उनको गुजरना पड़ता है। और वो सोचता है मैं इसमें से निकलूं, तो वो निकलने की जैसे कोशिश करता है तो एक दीवार आ जाती है, सब बंद हो जाता है। फिर दूसरी जगह से जाता है, वहां दीवार आ जाती है, तो वो निकल ही नहीं पाता है। फिर वो चिल्लाता है, फिर गाइड आता है और गाइड उसको ले जाता है। उसमें छोटी छोटी सीढ़ियां हैं, चार पांच जैसे सीढ़ियां, परंतु उसकी ट्रिक क्या है, युक्ति क्या है बाहर निकलने की? जो सीढ़ियां नीचे की ओर जाती है ना, उससे नहीं उतरना है, लेकिन नीचे भी उतर जाती है, ऊपर भी जाती है। तो जो ऊपर की ओर सीढ़ी जाती है उसमें से चढ़ना है, ये उसकी विशेषता। अगर निकलना है बाहर तो नीचे की तरफ जाएंगे, सोचेंगे हम नीचे चले जाएंगे लेकिन फंस जाएंगे। परंतु जो ऊपर जाती सीढ़ियां उस पर चढ़ते जाएंगे, चढ़ते जाएंगे तो ऊपर में एक दरवाजा आता है और वहां से सीधा लंबी सीढ़ी है, फिर वहां से नीचे उतरते हैं तो निकल आते हैं। परंतु गाइड के बिना ये नहीं होता है। तो बाबा भी कहते हैं हाँ, ये भूल भुलैया का खेल है, अपने आप आत्मा इससे मुक्त नहीं हो सकती है। बाप जो गाइड रूप में है वो ही जब आते हैं तब वो निकालते हैं। और इसका निकालने का तरीका क्या है? पवित्र बनो। पवित्रता ही एक मार्ग है जिससे तुम इस भूल भुलैये से निकल सकते हो और घर वापस जा सकते हो। तो आज बाबा ने विशेष इस रूप से समझाया है, तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। दूसरा भी बाबा ने कहा है, इस समय भगवान हमें अद्वैत मत देते हैं। दुनिया में तो कितना द्वैत है, भगवान के बारे में कितनी मते हैं, जितने मुख है उतनी बातें हैं भगवान के बारे में। कई ऐसे भी हैं जो मानते ही नहीं है, भगवान को मानते ही नहीं है। कई समझते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, कई समझते हैं भगवान आएगा, कई समझते हैं भगवान तो कभी आता ही नहीं है, कई समझते वो तो है ही यहाँ। तो इसीलिए अनेक मते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं आकर के एक मत देता हूं, अद्वैत मत है, जिस अद्वैत मत से तुम अद्वैत राज्य के मालिक बनते हो। वो राज्य कहाँ है? सतयुग में। तो अद्वैत, तो बाबा ने आज अद्वैत शब्द को भी बहुत ध्यान पर दिया है, सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज 10/10/25 है। मीठे बच्चे, तुम्हें एक बाप से एक मत मिलती है जिसे अद्वैत मत कहते हैं। इसी अद्वैत मत से तुम्हें देवता बनना है। देवता कैसे बनते हैं? अद्वैत मत से जो भगवान हमें देते हैं। मनुष्यों की अनेक मतें तो द्वैत हो जाता है, तो मनुष्य तो मुझ ही गए हैं। तो जब तक भगवान आकर के मत ना दे तब तक तो मुझ ही रहते हैं। तो मीठे बच्चे, तुम्हें एक बाप से एक मत मिलती है जिसे अद्वैत मत कहते हैं। इसी अद्वैत मत से तुम्हें देवता बनना है। प्रश्न है, मनुष्य इस भूल भुलैया के खेल में सबसे मुख्य बात कौन सी भूल गए हैं? कौन सी मुख्य बात भूल गए हैं? उत्तर, हमारा घर कहाँ है उसका रास्ता ही इस खेल में आकर भूल गए हैं। पता ही नहीं है कि घर कब जाना है, वो है कहाँ वो भी पता नहीं है। चलो मुक्ति को याद करते हैं, मोक्ष मिले से कहते हैं, लेकिन कब जाना है तो पता ही नहीं। पता ही नहीं कि घर कब जाना है और कैसे जाना है। अभी बाप आए हैं तुम सबको साथ ले जाने। तुम्हारा अभी पुरुषार्थ है वाणी से परे स्वीट होम में जाने का। क्या पुरुषार्थ है हमारा? वाणी से परे स्वीट होम जाने का। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। गीत का अर्थ और कोई समझ न सके ड्रामा प्लान अनुसार। हम रात के राही हैं, रात कौन सी, राही कौन, और सुबह की मंजिल कौन सी, बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार कोई भी ये समझते नहीं है। कोई कोई गीत ऐसे बने हुए हैं, है तो मनुष्यों के बनाए हुए गीत, परंतु वो तुमको बहुत मदद करते हैं। वो तो उन्होंने तो बना लिया, लेकिन मदद बाबा कहते हैं गीतों से तुमको होती है। बच्चे समझते हैं, अभी हम सो देवी देवता बन रहे हैं। जैसे वो पढ़ाई पढ़ने वाले कहेंगे, जो पढ़ाई पढ़ते वो क्या कहेंगे, हम सो डॉक्टर बनेंगे, हम सो बैरिस्टर बनेंगे। तो तुम्हारी बुद्धि में भी है, हम सो देवता बन रहे हैं नई दुनिया के लिए। बाबा ने कल भी कहा ना, ये पढ़ाई नई दुनिया के लिए, ऐसे नहीं हम यहीं देवता बन जाएंगे, नई दुनिया में बनेंगे, यहाँ पुरुषार्थ कर रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में है हम सो देवता बन रहे हैं नई दुनिया के लिए। ये सिर्फ तुम्हें ही ख्याल आता है और कोई को ऐसे ख्याल नहीं आएगा। कितनी भी पढ़ाई पढ़ ले कि हम ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं भविष्य के लिए, दूसरे जन्म के लिए, ये कोई नहीं समझते। तो बाबा कहते हैं ये सिर्फ तुम्हें ये ख्याल आता है। अमर लोक नई दुनिया सतयुग को कहा जाता है। अभी तो न सतयुग है और न ही देवताओं का राज्य है। यहाँ तो हो ही नहीं सकता देवताओं का राज्य, कलयुग में कहाँ देवताओं का राज्य होगा। तुम जानते हो ये चक्र घूमकर अभी हम कलयुग के भी अंत में आकर के पहुंचे हैं, और कोई की भी बुद्धि में चक्र नहीं आएगा। वो तो सत्यों को ही लाखों वर्ष कह देते हैं। तो तुम बच्चों को ये अभी निश्चय है। कौन सा निश्चय है? कि बरोबर ये 5000 वर्ष बाद चक्र फिरता है। मनुष्य 84 जन्म ही लेते हैं और उनका भी हिसाब है, कौन से युग में कितने जन्म, सारा हिसाब है, 84 जन्मों का तो हिसाब है ना, इस देवी देवता धर्म को और क्या नाम देंगे? देवी देवता धर्म को दूसरा नाम देंगे अद्वैत धर्म, जिस धर्म के समय और कोई भी दूसरे धर्म नहीं थे, एक ही विश्व पर राज्य था। इस देवी देवता धर्म को अद्वैत धर्म भी कहा जाता है, अद्वैत शास्त्र भी माना जाता है। अद्वैत शास्त्र में क्या बताते? आत्मा सो परमात्मा, आत्मा और परमात्मा में कोई द्वैत नहीं है, केवल एक अज्ञान का पर्दा है, वो हट जाए तो आत्मा परमात्मा बन जाए, ये अद्वैत समझते हैं हम। तो बाबा कहते अद्वैत शास्त्र भी माना जाता है, अब वो भी एक ही है, बाकी तो अनेक धर्म है, वो अद्वैत धर्म एक ही है, बाकी तो अनेक धर्म है, शास्त्र भी अनेक है, तुम हो एक, तुम सब हो एक, क्योंकि एक कीमत पर चलने वाले हो, तुम हो एक, एक द्वारा एक मत मिलती है, उसको कहा जाता है अद्वैत मत। एक द्वारा एक मत मिलना, इसको कहा जाता है अद्वैत मत। ये अद्वैत मत तुमको मिलती है, देवी देवता बनने के लिए ये पढ़ाई है ना, इसलिए बाप को क्या कहा जाता है? ज्ञान का सागर, नॉलेज फुल पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। तो बच्चे समझते हैं हमको भगवान पढ़ाते हैं नई दुनिया के लिए, ये भूलना नहीं चाहिए। स्कूल में स्टूडेंट कभी टीचर को भूलते हैं क्या? नहीं। गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले भी जास्ती पोजीशन पाने के लिए पढ़ते हैं, है ना, शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, फिर भी थोड़ा कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, ताकि जो नौकरी में इजाफा मिले, अच्छा पोजीशन मिले, तो पढ़ते हैं। तो बाबा कहते हैं अपनी उन्नति के लिए पढ़ते हैं, भले ग्रस्त व्यवहार में भी रहते हैं। तो दिल में तुम बच्चों को आना चाहिए, हम भी बेहद के बाप से पढ़ रहे हैं, भले ग्रस्त व्यवहार में है लेकिन हम भी बेहद के बाप से पढ़ रहे हैं। शिव बाबा भी बाबा है, प्रजापिता ब्रह्मा भी बाबा है, दोनों पिताएं हैं, बाबा है। प्रजापिता ब्रह्मा आदि देव नाम बाला है, सिर्फ पास्ट हो गए हैं, जैसे गांधी भी पास्ट हो गए हैं, ये दोनों बाप पिछले कल्प में भी मिले थे, शिव बाप और ब्रह्मा बाप, तो पास्ट हो गए। तो जैसे गांधी भी पास्ट हो गए हैं, उनको फिर बापूजी कहते हैं, बापू गांधी कहते हैं ना, उनको भी बापूजी कहते हैं, परंतु समझते नहीं है, ऐसे ही कह देते हैं, ऐसे बापूजी कह दिया। आप कहेंगे राष्ट्र बापू, लेकिन राष्ट्र तो पहले से ही था, ये थोड़ी कि भारत को बनाया, चलो अंग्रेजों से छुड़वाया, लेकिन भारत तो पहले से ही था, तो भारत का बापूजी तो कहने से जैसे कि भारत को रचा, वो तो है नहीं। तो बाबा कहते समझते नहीं, ऐसे कह देते हैं। ये शिव बाबा तो सच सच है, सचमुच हमारा पिता है। ब्रह्मा बाबा भी सच सच है, वो हमारा पिता है। लौकिक बाप भी सच सच होता है, ऐसे नहीं कि लौकिक बाप वो कहेंगे ऐसे ही है, नहीं नहीं, सच सच वो पिता है जिसने देह को जन्म दिया। लौकिक बाप भी सच सच होता है, बाकी कईयों को बापूजी कहते हैं, जैसे मेयर को भी बापूजी कह देते हैं, सिटी फादर कहते हैं ना, शहर का पिता, उसको मेयर जो कहते हैं, सिटी का फादर, शहर का पिता, तो उसको भी बापूजी कह देते, पिता कह दिया, पर शहर को रचा थोड़ी है। बस शिव बाबा ब्रह्मा बाबा सच्चे सच्चे बापूजी है, पिता है, लौकिक भी सच्चा सच्चा पिता है। तो बाबा कहते हैं बाकी मेयर आदि को तो ऐसे ही बापू कह देते हैं, वो सब है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल बापूजी, ये है रियल। कौन है रियल? शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और लौकिक पिता, ये तीन सच्चे सच्चे पिता हैं। ये है रियल परमात्मा बाप आकर आत्माओं को प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बनाते हैं, अपना बनाते हैं। उनके तो जरूर ढेर बच्चे होंगे, शिव बाबा की तो सब संतान है, उनको सब याद करते हैं, फिर भी कोई कोई उनको भी नहीं मानते हैं। परमात्मा को याद सब करते हैं, लेकिन फिर भी कई है जो नहीं मानते, पर याद जरूर करते हैं। हाँ, उस पर सुनाते हैं ना, एक जोक सुनाते हैं कि एक प्रोफेसर ने क्लास में अनाउंस किया, ऐलान किया कि परमात्मा नहीं है। तो कहा या नहीं है, है या नहीं है, नहीं है। तो फिर एक विद्यार्थी आकर के खड़ा हुआ, उसने कहा मैं भी कुछ बताऊं। तो फिर उसने भी बताया कि कैसे वो नहीं है, प्रूव किया जो प्रोफेसर ने कहा। तो उसी समय वो प्रोफेसर क्या कहता है, शुक्र है भगवान का कि मैं सिद्ध कर सका कि भगवान नहीं है। अब किसका शुक्र किया, थैंक गॉड कि हमने सिद्ध कर दिया कि भगवान नहीं है। तो जिसके लिए सिद्ध किया वो नहीं है, उसी का ही धन्यवाद किया। हाँ, तो देखो जरूर मानते हैं, भले कितने भी अपने को नास्तिक कहलाए। तो बाबा कहते पक्के, फिर भी कोई कोई उनको भी नहीं मानते, पक्के नास्तिक होते हैं जो कहते हैं ये तो दुनिया बनी ही संकल्प की है, ये संकल्प की दुनिया है। अभी तुमको बाप समझाते हैं, ये बुद्धि में याद रखो, हम पढ़ रहे हैं। क्या याद रखो, हम पढ़ रहे हैं और पढ़ाने वाला है शिव बाबा। ये रात दिन याद रहना चाहिए कि हम शिव बाबा से, भगवान से पढ़ रहे हैं। यही माया घड़ी घड़ी भुला देती है, भगवान से हम पढ़ रहे हैं ये माया भुला देती है। इसलिए याद करना होता है, बाप टीचर और गुरु, हाँ, तीनों को ही भूल जाते हैं। है भी एक ही, बाप अलग नहीं, टीचर अलग नहीं, गुरु अलग नहीं, तीनों एक ही है, तो भी भूल जाते हैं। तो बाबा कहते है भी एक ही, फिर भी भूल जाते हैं। रावण के साथ लड़ाई इसमें है, कैसे रावण बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। तो रावण के साथ लड़ाई इसमें है। बाप कहते हैं हे आत्माएं, तुम सतो प्रधान थी, अभी तमो प्रधान बनी हो। जब शांति धाम में थी तो पवित्र थी, प्यूरिटी के बिगर कोई आत्मा ऊपर में रह नहीं सकती। अपवित्र आत्माएं परम धाम में रह नहीं सकती, तो कोई भी ऊपर में रह नहीं सकती अगर वह पवित्र है। इसलिए सब आत्माएं पतित पावन बाप को बुलाती रहती है। जब सभी पतित तमो प्रधान बन जाते हैं, तब बाप आकर कहते हैं कि मैं तुमको सतो प्रधान बनाता हूँ। तुम जब शांति धाम में थे तो वहाँ सब पवित्र थे, अपवित्र आत्मा वहाँ कोई रह न सके। शांति धाम में कोई अपवित्र आत्मा रह न सके, सबको सजाएं भोग कर पवित्र जरूर बनना है। पवित्र बनने बिगर कोई वापस भी जा न सके। फल कोई कह देते हैं कि फलाना ब्रह्म में लीन हो गया, है ना, कोई सन्यासी शरीर छोड़ता है तो यही कहते ब्रह्म लीन हो गया। तो बाबा कहते भल कोई कह देते कि ब्रह्म में लीन हुआ या फलाना ज्योति ज्योत समाया, अब ये सब है भक्ति मार्ग की अनेक मते। कोई भी न समाता है न लीन होता है शरीर छोड़ने के बाद, ये सब है भक्ति मार्ग की अनेक मते। तुम्हारी ये है अद्वैत मत, मनुष्य से देवता तो एक बाप ही बना सकते हैं। कल्प कल्प बाप आकर पढ़ाते हैं, उनकी एक्ट, हाँ, जो वो कार्य करते हैं वो उनकी एक्ट, कल्प पहले माफिक ही चलती है, कल पहले भी ऐसे ही एक्ट की थी, अभी भी वही एक्ट चल रही है। ये अनादि बना बनाया ड्रामा है ना, सृष्टि चक्र फिरता रहता है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, फिर है ये संगम युग। मुख्य धर्म भी ये चार है, दीतिज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म और क्रिश्चियनिज्म, अर्थात जिसमें राजाई चलती है। बाकी तो अनेक मठ पंथ तो बहुत होंगे छोटे छोटे तो, लेकिन चार धर्मों में राजाई चलती है, देवता धर्म में, इस्लाम धर्म में, बुद्धिज्म में और क्रिश्चियनिटी में राजाई चलती है, इसीलिए ये चार मुख्य धर्म हैं। तो बाबा कहते हैं बाकी ब्राह्मणों की राजाई नहीं है, ब्राह्मण की राजाई नहीं है, फिर देवता बनेंगे तब राजाई होगी, ब्राह्मणों की राजाई नहीं है, न कौरवों की राजाई है। अभी तुम बच्चों को घड़ी घड़ी याद करना है बेहद के बाप को, तुम ब्राह्मणों को भी समझा सकते हो, लौकिक ब्राह्मणों को भी ये बातें समझा सकते हो। बाबा ने बहुत बार समझाया है कि पहले पहले ब्राह्मण चोटी है, ब्रह्मा की मुख वंशावली पहले पहले तुम हो, पहली रचना भगवान की ब्रह्मा द्वारा रचना पहली पहली तुम हो, ये तुम जानते हो। फिर भक्ति मार्ग में हम ही पूज्य से पुजारी बन जाते हैं, फिर अभी हम पूज्य बन रहे हैं, वो ब्राह्मण तो गृहस्थी होते हैं न कि सन्यासी। सन्यासी तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण जब कहते हैं ना, लौकिक ब्राह्मण भी वो सब गृहस्थी होते हैं, सन्यासी नहीं, न कि सन्यासी। सन्यासी तो हठ योगी है, घर बार छोड़ना ये हठ है ना। हठ योगी भी अनेक प्रकार के योग सिखलाते हैं, जयपुर में हठ योगियों का भी म्यूजियम है, बहुत बड़ा म्यूजियम है हठ योगियों का, वो उसमें एक कमरा तो खास उसके लिए है, अनेक प्रकार के आसन तो छोटे छोटे जैसे खिलौने टाइप बनाए हैं, अलग अलग आसन कैसे दिखाते हैं, तो हठ योग के अलग अलग आसन तो उसमें वो बने हुए हैं, तो जैसे क्या बोलते हैं खिलौने बने हुए। तो बाबा कहते हैं जयपुर में हठ योगियों का भी म्यूजियम है, राजयोग के चित्र तो है नहीं। अच्छा, राजयोग के चित्र कहाँ है? बाबा कहते हैं राजयोग के चित्र यहाँ दिलवाड़ा मंदिर में है, सब योगी बैठे हैं, हाँ तपस्या कर रहे हैं, ये राजयोग के चित्र हैं। राजयोग के चित्र है ही यहाँ दिलवाड़ा में, इनका म्यूजियम तो है नहीं, ये म्यूजियम नहीं है इनका, ये तो मंदिर है ना दिलवाड़ा मंदिर। हठ योग के कितने म्यूजियम है, राजयोग का मंदिर यहाँ भारत में ही है, दिलवाड़ा मंदिर ये है, और ये है चैतन्य, वो है जड़, ये है चैतन्य। तुम यहाँ चैतन्य में बैठे हो, मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है कि स्वर्ग कहाँ है, दिलवाड़ा मंदिर में नीचे तपस्या में बैठे हैं, वो आदिनाथ दिखाते ना नीचे नीचे दिखाया, अंदर एक कोठरी है वहां दिखाया है, तो दिलवाड़ा मंदिर में नीचे तपस्या में बैठे हैं, और फिर हाँ तपस्या कर रहे हैं, और फिर ऊपर ये तपस्या का पूरा यादगार है, फिर उसके ऊपर स्वर्ग दिखाया है, तो जरूर स्वर्ग ऊपर ही दिखाना पड़े, नीचे तो नहीं दिखाएंगे ना स्वर्ग, जब तपस्या कर रहे हैं तब तो स्वर्ग नहीं है, तो वो तो तपस्या के बाद स्वर्ग में जाते हैं, तो इसलिए स्वर्ग ऊपर दिखाया है, छत नहीं, जरूर स्वर्ग ऊपर ही दिखाना पड़े। मनुष्य फिर समझ लेते हैं, क्या समझ लेते हैं कि स्वर्ग ऊपर में है, कहीं ऊपर है स्वर्ग, ये समझ लेते हैं, तो मनुष्य समझ लेते हैं स्वर्ग ऊपर में है। अब ये तो चक्र फिरता है, जब स्वर्ग ऊपर होता है तो कहेंगे नरक नीचे, फिर नरक ऊपर जाता है तो स्वर्ग नीचे, तो बाबा कहते ये तो चक्र फिरता रहता है, आधा कल्प के बाद स्वर्ग फिर नीचे चला जाएगा, फिर आधा कल्प स्वर्ग ऊपर आ जाएगा। इनकी आयु कितनी है ये कोई भी नहीं जानते, तुमको बाप ने सारा चक्र समझाया है, तुम ज्ञान लेकर ऊपर जाते हो, चक्र पूरा होता है फिर नए सिर चक्र शुरू होगा। ये बुद्धि में चलना चाहिए, चलता है ये सब बातें बुद्धि में। बाबा कहते ये बातें बुद्धि में चलनी चाहिए। जैसे वो नॉलेज पढ़ते हैं तो बुद्धि में किताब आदि सब याद रहते हैं ना, ये भी पढ़ाई है। ये भरपूर रहना चाहिए, हाँ पढ़ाई ये बुद्धि में भरपूर रहनी चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। ये पढ़ाई कौन कौन पढ़ सकते हैं? बूढ़े जवान बच्चे आदि सबको पढ़ने का हक है, हाँ पढ़ने का हक है, बूढ़ों को भी हक है, एक ही क्लास में बैठते हैं बूढ़े जवान बच्चे, तो सबको पढ़ने का हक है। सिर्फ अलफ को जानना है, अलफ को जान लिया तो बाप की प्रॉपर्टी भी बुद्धि में आ जाएगी। जानवर को भी बच्चे आदि सब बुद्धि में रहते हैं, जानवर भी अपने बच्चों को नहीं भूलते हैं और बच्चे भी अपने जानवर माँ बाप को नहीं भूलते हैं। तो बाबा कहते हैं जानवर को भी बच्चे आदि सब बुद्धि में रहते हैं, जंगल में जाएंगे तो भी घर और बछड़े याद आते रहेंगे। चढ़ने जाते हैं ना गाय भैंस चढ़ने जाती है तो परंतु अपने बछड़ों को थोड़ी भूल जाती है, तो जंगल में जाएंगे तो भी घर और बछड़े याद आते रहेंगे। आप ही ढूंढ कर आ जाते हैं घर वापस जाते ना, कईयों गायों गायों को देखते ना, कोई उनका कोई ऊपर होता नहीं उनको रास्ता दिखाने वाले, लेकिन उनको अपने घर का पता है, वो अपने आप अपने घर चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं आप ही ढूंढ कर आ जाते हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे माँ में कम याद करो और अपने घर को याद करो, जानवर भी अपने घर को याद करते हैं, तो बाबा कहते हैं तुम आत्माएं भी अपने घर को याद करो। जहां से तुम आए हो पाठ बजाने, आत्मा को घर बहुत प्यारा लगता है, कितना याद करते हैं। मोक्ष को याद करना, मुक्ति को याद करना, ये जैसे घर को ही याद करना है ना, तो कितना याद करते हैं, परंतु याद तो करते हैं परंतु रास्ता भूल गए हैं। इसलिए कैसे जाना है उस मुक्ति में, वो रास्ता भूल गए हैं। तो तुम्हारी बुद्धि में है हम बहुत दूर रहते हैं, बहुत दूर रहते हैं, परंतु वहां जाना कैसे होता है हम भूल गए हैं। क्यों नहीं हम जा सकते हैं ये कुछ भी पता नहीं है। कहीं कहते हम क्यों नहीं जा सकते, अरे रास्ते का पता ही नहीं है, उसके लिए तो पवित्रता पहले चाहिए फिर दूसरा गाइड चाहिए, ऐसे तो नहीं जा सकते हम। तो बाबा कहते हैं क्यों नहीं हम जा सकते हैं ये कुछ भी पता नहीं है। इसलिए बाबा ने बताया था भूल भुलैया का खेल भी बनाते हैं। देखा है लखनऊ में जिन्होंने ये भूल भुलैया का वो मकान देखा, हाथ उठाओ। अच्छा थोड़ों ने देखा है, हैव यू सीन, नो हैव यू बीन टू लखनऊ, नो यू मस्ट गो टू लखनऊ एंड यू सी दैट बिल्डिंग एंड द वॉल्स आर वेरी स्मॉल ऑल्सो, यू हैव टू बेंड डाउन हाफ ऑफ यू टू एंटर दोज रूम्स, टू एंटर दोज यू नो गैलरीज। तो बाबा कहते हैं इसीलिए बाबा ने बताया था भूल भुलैया का खेल भी बनाते हैं। जहां से जाए दरवाजा बंद। अभी तुम जानते हो इस लड़ाई के बाद स्वर्ग का दरवाजा खुलता है, स्वर्ग का ऊपर ऊपर जाते हैं ना फिर वहां दरवाजा उनको खुला मिलता है, तो वो स्वर्ग का दरवाजा खुला है। इस लड़ाई के बाद स्वर्ग का दरवाजा खुलता है। इस मृत्यु लोक से सब जाएंगे, इतने सब मनुष्य नंबर वार धर्म अनुसार और पाठ अनुसार जाकर रहेंगे। हर एक आत्मा वहां अपने पाठ अनुसार और धर्म अनुसार वहां रहेंगी, उनका हर एक धर्म का अपना अपना सेक्शन होगा परम धाम में भी उस आत्माओं के झाड़ में। इस मृत्यु लोक से सब जाएंगे, इतने सब मनुष्य नंबर वार धर्म अनुसार और पाठ अनुसार जाकर रहेंगे। तो तुम्हारी में तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें हैं। मनुष्य ब्रह्म तत्व में जाने के लिए कितना माथा मारते हैं। वाणी से परे जाना है, निर्वाण धाम कहते हैं ना, तो निर्वाण माना वाणी से परे जाना है, उसके लिए माथा मारते हैं। आत्मा शरीर से निकल जाती है तो फिर आवाज नहीं रहता, वैसे भी आत्मा निकल गई तो आवाज नहीं रहता। बच्चे जानते हैं हमारा तो वो स्वीट होम है, फिर देवताओं की है परमधाम स्वीट होम है, और फिर स्वर्ग बाबा कहते हैं देवताओं की स्वीट राजधानी है, अद्वैत राजधानी है, केवल एक ही महाराजा महारानी है विश्व का। बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं, सारी नॉलेज समझाते हैं, जिसके फिर भक्ति में शास्त्र आदि बैठ बनाए हैं। अभी तुमको ये शास्त्र आदि नहीं पढ़ना है, सारा सार भगवान हमें समझा रहे हैं, फिर क्यों बैठ के हम इतना सारा पढ़े। अभी तुमको वो शास्त्र आदि नहीं पढ़ना है, उन स्कूलों में तो बुढ़िया आदि नहीं पढ़ती है, बुढ़िया ही थोड़ी वहां स्कूलों में पढ़ेगी, उनके लिए होता है प्रौढ़ शिक्षा के लिए अलग स्थान होते हैं जहाँ बड़े बड़े भी पढ़ते हैं। बाकी तो स्कूल में अभी कहाँ 10 साल का बच्चा पढ़ेगा और वहां 80 साल का बूढ़ा थोड़ी बैठेगा साथ में, तो उन स्कूलों में बुढ़िया आदि नहीं पढ़ती है, यहाँ तो सब पढ़ते हैं। तुम बच्चे अमर लोक में देवता बन जाते हो, वहां कोई ऐसे अक्षर नहीं बोले जाते हैं जिससे किसी की ग्लानी हो। सत्युग में कोई ऐसे अपशब्द किसी के प्रति भी कभी नहीं बोलते, वहां पर मुख से तो कैसे बाबा कहते फूल झड़ते होंगे। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे अमर लोक में देवता बन जाते हो, वहां कोई ऐसे अक्षर नहीं बोले जाते जिससे किसी की ग्लानी हो। अभी तुम जानते हो स्वर्ग पास्ट हो गया, उनकी महिमा है, स्वर्ग की बहुत महिमा है, कितने मंदिर बनाते हैं। उनसे पूछो ये लक्ष्मी नारायण कब होकर के गए, ये तो स्वर्ग के मालिक थे, सतयुग के मालिक थे, ये कब होकर गए, कुछ भी पता नहीं है। अभी तुम जानते हो हमको अपने घर जाना है। बच्चों को समझाया है ओम का अर्थ अलग है और हम सो सो हम का अर्थ अलग है। ओम का अर्थ क्या है, वही मैं, तो मैं कौन, आत्मा, तो वही मैं आत्मा हूं। और हम सो सो हम का अर्थ क्या है, हम सो देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र, तो हम सो में ओम शब्द नहीं आता है। तो बाबा कहते हैं ओम का अर्थ अलग है और हम सो का अर्थ अलग है। उन्होंने फिर ओम हम सो का अर्थ एक कर दिया है। तुम आत्मा कैसे एक कर दिया है, आत्मा सो परमात्मा कह करके, तो जैसे सब एक हो गया। तुम आत्मा शांति धाम में रहने वाली हो, फिर आती हो पाठ बजाने, देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हो। ओम अर्थात हम आत्मा, हम सो हम अर्थात देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्राह्मण, तो ओम अर्थात हम आत्मा, तो कितना फर्क है, दोनों मंत्र देते हैं, कहीं कोई मंत्र मिलता है हम सो का क्या अर्थ है कुछ पता नहीं, हम सो हम ये मंत्र मिलता है, ओम का भी मंत्र मिलता है, पर क्या अर्थ है बाबा कहते नहीं समझते, कितना फर्क है। वो फिर दोनों को एक कर देते हैं। ये बुद्धि से समझने की बातें हैं, कोई पूरी रीति समझते नहीं है। बाबा की मुरली चलती है, मुरली भी सुनते हैं परंतु पूरी समझ में नहीं आती है, तो फिर झुटके खाते रहते हैं, क्लास में भी बैठे होंगे झुटके खाते रहेंगे, पूरा समझ में नहीं आता है बाबा की मुरली का, तो बाबा कहते फिर झुटके खाते रहते हैं। अरे कमाई में कभी झुटका खाते हैं क्या, पढ़ाई पढ़ रहे हो उस पे कमाई होगी, तो कमाई में कभी झुटका खाया जाता है क्या, ये कमाई तो है, वो कमाई तो है अल्पकाल के लिए और ये कमाई है आधा कल्प के लिए, परंतु बुद्धि और तरफ भटकती है तो फिर थक जाते हैं, सुनते सुनते नींद आने लगती है, थक जाते हैं, हाँ, क्योंकि बुद्धि और तरफ भटकती रहती है, उबासी देते रहते हैं, नींद चलो नहीं आती है, फिर उबासी देते रहते हैं, मना थक गए ना, उबासी देते रहते हैं। तुमको तो आंखें बंद करके भी नहीं बैठना चाहिए, है तो नहीं किसी की आंखें बंद, चलो नींद नहीं कर रहे हैं, उबासी नहीं दे रहे हैं, आंखें बंद करके ऐसे बैठे हैं, वो भी बाबा कहते नहीं होना चाहिए। तुमको तो आंखें बंद करके भी नहीं बैठना चाहिए, तुम तो जानते हो आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है, कलयुगी नरकवासी मनुष्यों को देखने और तुम्हारे देखने में भी रात दिन का फर्क हो जाता है। मनुष्य मनुष्य को कैसे देखते हैं, देह रूप में देखते हैं, और हम एक दो को देखते हैं तो कैसे देखते हैं, आत्मा रूप में देखते हैं, तो उनके देखने और हमारे देखने में भी फर्क पड़ जाता है। तुम जो तुम्हारा कहते हैं, तुम तो जानते हो आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है, तो कलयुगी नरकवासी मनुष्यों को देखने और तुम्हारे देखने में भी रात दिन का फर्क हो जाता है। हम आत्मा बाप द्वारा पढ़ते हैं ये कोई को पता नहीं, ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं, हम आत्मा सुन रही है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे, तुम्हारी बुद्धि ऊपर चली जाएगी, बाबा को याद करेंगे बुद्धि ऊपर चली जाएगी। शिव बाबा हमको नॉलेज सुना रहे हैं, इसमें बहुत रिफाइन बुद्धि चाहिए, ये ज्ञान समझने के लिए बहुत रिफाइन बुद्धि चाहिए, रिफाइन बुद्धि करने के लिए बाप युक्ति बताते हैं। क्या युक्ति है रिफाइन बुद्धि करने लिए, अपने को आत्मा समझने से बाप जरूर याद आएगा, तो बुद्धि रिफाइन हो गई। अपने को आत्मा समझने से बाप जरूर याद आएगा, अपने को आत्मा समझते ही इसलिए है, क्यों समझते हम अपने आप को आत्मा, इसलिए है कि बाप याद पड़े, क्योंकि देह अभिमान में होंगे तो बाबा याद नहीं पड़ेगा, व्यर्थ संकल्प आते रहेंगे ना देह अभिमान के, पर आत्मा समझेंगे तब बाबा याद आएगा। अपने को आत्मा समझते ही इसलिए है कि बाबा याद पड़े, संबंध रहे तो सारा संबंध रहे, जो सारा कल्प टूटा है भगवान से मेरा संबंध, सारा कल्प टूटा है, केवल अभी जब हम अपने को आत्मा समझते हैं तब संबंध फिर से जुड़ता है बाबा से। वो तो है प्रारब्ध, सुखदा में संबंध टूटा ऐसे भी नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो प्रारब्ध है, वहां तो है प्रारब्ध, सुख ही सुख, दुख की बात ही नहीं है, उनको हेवन कहते हैं, हेवनली गॉड फादर ही हेवन का मालिक बनाते हैं। तो ऐसे बाप को भी कितना भूल जाते हैं, जो हेवन का मालिक बनाने वाला बाप उनको भूल जाते हैं। तो बाप आकर बच्चों को एडॉप्ट करते हैं, मारवाड़ी लोग बहुत एडॉप्ट करते हैं, धनवान लोग होते हैं ना, मारवाड़ी लोग काफी धनवान भी होते हैं, कईयों को बच्चा नहीं होता है, तो फिर वो बच्चा बहुत एडॉप्ट करते हैं, कई बार भाई के बच्चे को, बहन के बच्चे को, हाँ, या कोई ना कोई को, कजिन को, कोई को एडॉप्ट कर लेते, अपना बना लेते हैं, क्योंकि समझ इतनी प्रॉपर्टी है तो क्या करें, किसके नाम करें, तो फिर एडॉप्ट करते हैं। तो बाबा कहते हैं मारवाड़ी लोग बहुत एडॉप्ट करते हैं, तो उनको खुशी होगी ना, अब जो बच्चा एडॉप्ट हुआ वो किसी वो गरीब माँ बाप का होगा, परंतु साहूकार ने एडॉप्ट कर लिया तो उनको खुशी होगी ना, मैं साहूकार की गोद में आया हूँ। साहूकार का बच्चा गरीब के पास कभी नहीं जाएगा, वो एडॉप्ट करेगा भी कैसे, गरीब उसको अपने लिए ही नहीं है तो बच्चा एडॉप्ट करके क्या करेगा, पर अमीर होगा तब गरीब के बच्चे को एडॉप्ट करेगा। साहूकार का बच्चा गरीब के पास कभी नहीं जाएगा, ये प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं तो जरूर मुख वंशावली होंगे। तुम ब्राह्मण हो मुख वंशावली, और वो है जो दुनिया में ब्राह्मण है वो है कुख वंशावली। इस फर्क को तुम जानते हो, तुम जब समझाओ तब मुख वंशावली बने। तब वो जो है कुख वंशावली ब्राह्मण भी है, उनको भी तुम ज्ञान दो तो वो ज्ञान समझ करके वो भी मुख वंशावली बन जाए। तुम जब समझाओ तब मुख वंशावली बने, ये एडॉप्शन है। भगवान को पहचाना, भगवान के बन गए, बाबा को कहा बाबा आप मेरे हो, तो एडॉप्ट हो गए ना बाबा के पास। तो ये एडॉप्शन है। स्त्री को समझते हैं मेरी स्त्री। अब स्त्री, बाबा पूछ रहे हैं, स्त्री कुख वंशावली है या मुख वंशावली, कौन है वो? हाँ, स्त्री कौन हुई, कुख वंशावली या मुख वंशावली? मुख वंशावली, क्योंकि जब शिव विवाह करते तो कहते ना, तो मेरी हो मैं तेरी हूँ, हाँ तुम तेरी और मेरी एक हो जाते हैं, तो इसलिए मुख वंशावली हुई। अब स्त्री कुख वंशावली है या मुख वंशावली, तो स्त्री है ही मुख वंशावली। मुख से बोला तो मेरी हो, और उसने कहा आप मेरे हो, हाँ तो फिर इसीलिए मुख वंशावली। स्त्री है ही मुख वंशावली। फिर जब बच्चे होते हैं वो कुख वंशावली है, उनसे जो बच्चे हुए वो कुख वंशावली। तो बाप कहते हैं ये सब है मेरी मुख वंशावली। ब्राह्मण मेरी कहने से मेरी बनी ना, मेरी मुख वंशावली, बाबा ने कहा तो सब मेरी बन गए ना, मेरे बच्चे हैं। ये कहने से नशा चढ़ता है, भगवान को भी नशा चढ़ता है, मेरे बन गए बच्चे, इतने बच्चे हैं। तो ये है सब मुख वंशावली। आत्माओं को मुख वंशावली नहीं कहेंगे, पर जब शरीर के साथ है तब मुख वंशावली। आत्माओं को मुख वंशावली क्यों नहीं कहेंगे? हाँ, आत्मा ही थोड़ी मुख वंशावली है। क्यों? आत्मा तो अनादि अविनाशी है, वो तो है ही सदा बच्चे। तो कोई कहा और बच्चे बने ऐसे तो नहीं है ना आत्मा के लिए। आत्मा तो अनादि अविनाशी है। तुम जानते हो यह मनुष्य सृष्टि कैसे ट्रांसफर होती है, हाँ बदलती है, सत्ययुग आता है, ट्रांसफर होती है। पॉइंट्स तो बच्चों को बहुत मिलती है, फिर भी बाबा कहते हैं और कुछ धारणा नहीं होती। मान लो बाबा कहते हैं मुख नहीं चलता, ये ज्ञान नहीं सुना सकते, तो बाबा कहते अच्छा तुम बाबा को याद करते रहो, कोई बात नहीं, नहीं ज्ञान सुना सकते हो कोई बात नहीं, तुम बाबा को याद तो करते रहो। तो बाबा कहते हैं अगर तुम बाबा को याद करेंगे भले ज्ञान नहीं सुना सकते हो, तो बाबा कहते हैं तो ज्ञान सुनाने वालों से भी तुम ऊंच पद पा सकते हो। सुना? हाँ, माता ही कहेगी कि हम तो ज्ञान नहीं सुना सकते, बाबा कहते कोई बात नहीं तुम भले ज्ञान नहीं सुना सकते, बाबा को याद तो कर सकते हो ना, तो तुम ज्ञान सुनाने वालों से भी ऊंच पद पा सकते हो। तो ऊंच पद पा सकते हो। भाषण करने वाले कोई समय तूफान में गिर पड़ते हैं, थोड़ा भाषण करने वालों को अभिमान आता है ना, मैं तो कितना अच्छा भाषण करती हूँ, मैं तो बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स देती हूँ, वो अभिमान आ गया तो गिरा, यही होता है। अगर वो देही अभिमानी होकर रहे तो बाबा कहते हैं फिर माया नहीं आएगी, पर देह अभिमान आ जाता है तो इसीलिए बाबा कहते हैं माया उनको गिरा देती है। तो भाषण करने वाले कोई समय तूफान में गिर पड़ते हैं, वो गिरे नहीं बाप को याद करते रहे तो जास्ती पद पा सकते हैं। भले भाषण करना नहीं आता है पर बाबा को याद करते रहे और गिरे नहीं, हाँ भिखारी नहीं बने, अभिमान नहीं आया, तो बाबा कहते जास्ती पद पा सकते हैं। सबसे जास्ती जो विकार में गिरते हैं तो पांच मंजिल से गिरने से हड्कुट टूट जाता है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो बाबा कहते अहंकार जो है वो पांचवा मंजिल है, अभिमान टूट जाता है। पांचवी मंजिल है देह अभिमान, देहाभिमान से गिरा मना, हड्डियां टूट गई। चौथी मंजिल है काम, तो अभिमान ऊपर आ गया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, अहंकार ऊपर आ गया, तो ऊपर आ गया तो वो पांचवी मंजिल हो गई, फिर काम चौथी मंजिल। तो चौथी मंजिल है काम, फिर उतरते आओ। तो बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, लिखते भी हैं बाबा हम गिर पड़े, क्रोध के लिए ऐसे नहीं कहेंगे हम गिर पड़े, तो हाँ क्या कहेंगे, क्रोध के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि हम गिर पड़े। काला मुंह करने से बड़ी चोट लगती है, काम से गिरते हैं तो काला मुंह हो गया तो गिर पड़े। काला मुंह करने से बड़ी चोट लगती है, फिर दूसरे को कह न सके कि काम महाशत्रु है, तो बाबा बार बार समझाते हैं क्रिमिनल आंखों को, क्रिमिनल आंखों की बहुत संभाल करनी है, सतयुग में नंदन होने की बात ही नहीं, क्रिमिनल आय होती नहीं, सिविल आय हो जाती है, वो है सिविलियन राज्य, सिविलाइज्ड राज्य। इस समय है क्रिमिनल दुनिया, सिविलाइज्ड राज्य, और ये है क्रिमिनल दुनिया, क्रिमिनल राज्य। अभी तुम्हारी आत्मा को सिविलाइज्ड मिलती है, शुद्ध आंखें मिलती है, जो 21 जन्म काम देती है, वहां कोई भी क्रिमिनल नहीं बनते। अब मुख्य बात बाप समझाते हैं, बाप को याद करो और 84 के चक्र को याद करो। ये भी वंडर है, क्या वंडर है कि जो श्री नारायण वही अंत में आकर के भाग्यशाली रथ बनता है, वही श्री नारायण की आत्मा अंतिम जन्म में ब्रह्मा बनती है, भाग्यशाली रथ बनता है, उनमें बाप की प्रवेशता होती है तो भाग्यशाली बनते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ये 84 जन्मों की हिस्ट्री बुद्धि में रखनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। मुरली के बाद आप सबको आगे का प्रोग्राम बताएंगे, हमारे ब्रिजमोहन भाई का पार्थिव शरीर यहाँ लाया जाएगा मधुबन में, तो इसके बारे में वैसे तो सबको पता चल ही गया होगा, लेकिन लास्ट में हम ये सुनाएंगे सबके लिए जो भी मधुबन में हैं। तो धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाप की याद से बुद्धि को रिफाइंड बनाना है, बुद्धि पढ़ाई से सदा भरपूर रहे, बाप और घर सदा याद रखना है और याद दिलाना है। दूसरा, इस अंतिम जन्म में क्रिमिनल आय को समाप्त कर सिविल आय बनानी है, क्रिमिनल आंखों की बड़ी संभाल रखनी है। वरदान, दातापन की स्थिति और समाने की शक्ति द्वारा सदा विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप भवा, दातापन की स्थिति और समाने की शक्ति द्वारा सदा विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप भवा। विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप बनने के लिए वरदान, बनने का वरदान विशेष दो बातों के आधार से प्राप्त होता है। विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप बनने का वरदान विशेष दो बातों के आधार पर प्राप्त होता है। पहला, सदा स्मृति रहे हम दाता के बच्चे हैं, इसलिए मुझे सबको देना है, रिगार्ड मिले स्नेह मिले तब स्नेही बने, नहीं मुझे देना है। और दूसरा, स्वयं के प्रति तथा संबंध संपर्क में सर्व के प्रति समाने की शक्ति स्वरूप सागर बनना है। इन्हीं दो विशेषताओं से शुभ भावना शुभ कामना से संपन्न समाधान स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन, सत्य को अपना साथी बनाओ तो आपकी नैया कभी डूब नहीं सकती। सत्य को अपना साथी बनाओ तो आपकी नैया कभी डूब नहीं सकती। अव्यक्त इशारे, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो के अंतर्गत, जब मनसा में सदा शुभ भावना व शुभ दुआएं देने का नेचुरल अभ्यास हो जाएगा तो मनसा आपकी बिजी हो जाएगी। मन में जो हलचल होती है उसे स्वतः ही किनारे हो जाएंगे। अपने पुरुषार्थ में जो कभी दिल शिकस्त होते हो वो नहीं होंगे, जादू मंत्र हो जाएगा। दिल शिकस्त नहीं होंगे, जादू मंत्र हो जाएगा। ओम शांति, ओम शांति। तो जैसे आप कल से सुन रहे हैं, हमारे आदरणीय ब्रिजमोहन भाई जी, ब्रिजमोहन भाई जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने लिए आज तो उनका पार्थिव शरीर ओआरसी में रखा गया है, और ओआरसी में सब दिल्ली जोन और भी कई ऐसे होंगे वीआईपीस, वो भी आएंगे और अंतिम दर्शन करेंगे। तो ब्रिजमोहन भाई जी ने दिनांक 9/10/2025 गुरुवार समय सुबह 10:30 अपना पार्थिव शरीर त्याग कर बाप दादा की गोद ली, और दिनांक 11 तारीख शनिवार सुबह 9 बजे से ब्रिजमोहन भाई जी के पार्थिव शरीर को पांडव भवन के हिस्ट्री हॉल में रखा जाएगा। तो आज 10 तारीख है, आज सारा दिन वहाँ वर्सी में होगा, और शाम को 5 बजे वो बॉडी को ले जाएंगे एम्बुलेंस में, और सवेरे कल 11 तारीख को सवेरे 9 बजे यहाँ पर वो एम्बुलेंस पहुंचेगी और ब्रिजमोहन भाई जी के पार्थिव शरीर को पांडव भवन के हिस्ट्री हॉल में रखा जाएगा। कल सुबह 9 बजे आ जाएगी एम्बुलेंस, तो सुबह 9 बजे आएगी और उसके बाद फिर सारा दिन रहेगा, सारी रात पार्थिव देह रहेगा हिस्ट्री हॉल में, और फिर 12 तारीख को रविवार सुबह 11 बजे पांडव भवन 4 धाम की परिक्रमा कराई जाएगी, और 11:30 बजे माउंट आबू म्यूजियम में श्रद्धांजलि देंगे, फिर 12 बजे ग्लोबल हॉस्पिटल में सभी निवासी श्रद्धांजलि देंगे, और फिर दोपहर 12:30 बजे ज्ञान सरोवर की परिक्रमा एवं सभी निवासी श्रद्धांजलि देंगे। ये 12 तारीख की बात है। और दोपहर 3 बजे शांति वन के तपस्या धाम के सामने श्रद्धांजलि के लिए रखा जाएगा, और दोपहर 4 बजे मुक्ति धाम में अंतिम संस्कार होगा 12 तारीख को। तो आज 10 तारीख है, आज शाम को निकलेंगे ओआरसी से और कल यहाँ पहुँचेंगे 9 बजे, और फिर हिस्ट्री हॉल में रखेंगे। तो इसलिए सवेरे का नाश्ता तो कल सभी यहाँ करेंगे, परंतु उसके बाद दिन का भोजन यहाँ नहीं पकेगा, रात का भोजन भी नहीं पकेगा, वो ज्ञान सरोवर में जाना होगा आपको भोजन करने लिए। तो इसीलिए वहीं पर भोजन होगा दिन का और रात का। तो इसीलिए, और फिर परसों भी जब लेंगे 12 तारीख को, तो 11 बजे पड़ी को लेंगे, तो परसों का नाश्ता भी नहीं होगा। तो इसीलिए पांडव भवन 4 धाम की यात्रा कराएंगे, पर ज्ञान सरोवर में भोजन प्राप्त होगा। तो जिनको भी भोजन पे जाना है वो ज्ञान सरोवर जाकर भोजन करेंगे, यहाँ पार्थिव देह होगा हिस्ट्री हॉल में, और सारी रात जो जाग सकते हैं बहुत अच्छा, परंतु योग तो चलता रहेगा, जरूर जागेंगे, जो सारी रात भी योग चलता रहेगा। तो ये आज शाम को निकल के कल सुबह यहाँ पर पहुंचेगा पार्थिव शरीर। अभी हम सब उस आत्मा को अपना जो शांति धाम देंगे सब बाबा की याद में। और आपको जो टोली मिल रही है बाहर, ये सूरत वराछा से टोली आई है, धारी कहते हैं इसको, धारी जो क्लास की आज टोली है सूरत वराछा से आई है। ओम शांति। तो चलिए सभी शांति का दान देंगे।